ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम, तब मैं अवतरित होता हूं और अवतरित होकर क्या करता हूं, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करता हूं, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करता हूं, धर्म संस्थापनार्थ है धर्म की स्थापना करता हूं, संभवामी युगे युगे, हर युग में मैं अवतरित होता हूं। तो ये बात सार में बता दी गई, पर अलग अलग युगों में जब भी ये नियम को तोड़ा जाता है, अधर्म बढ़ता है, धर्म की ग्लानि हो जाती है, तो भगवान अवतरित होते, भगवान अवतरित होते हैं। वही घटना फिर से घटी, सतयुग की बात है। सतयुग में वर्णन है कि किस प्रकार जय और विजय वैकुंठ में निवास करते थे, वैकुंठ के द्वारपाल थे, और वहां चतुष्कुमार ब्रह्मा जी के चार मानसी पुत्र वो वहां गए, पर क्योंकि वो निर्वस्त्र अवस्था में थे, 5 साल के बालक के रूप में, और वो प्रवेश कर रहे थे, 6 द्वार को प्रवेश किए, 7वां द्वार पे उन्होंने जय विजय ने रोक दिया उन्हें। तो कुमार क्रोधित हो गए, बोले वैकुंठ में कोई भी जा सकता है, आप क्यों रोक रहे हो, आप शरीर की स्थिति को देख रहे हो, यानी आप द्वंद्व में हो, इसीलिए हम आपको शाप देते हैं। तो तैयार हो गए वो, जैसे शाप देने के लिए तैयार हो गए तो तुरंत वहां से साक्षात विष्णु आ गए और बोले नहीं नहीं नहीं, इन लोगों की गलती हो गई है, एक्चुअली सेवक कुछ गलती करता है तो मालिक का गलती है, तो उनकी सेवा उनकी तकलीफ नहीं है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और भगवान ने कहा कि अगर मेरे भक्तों के प्रति कुछ अपराध होता है, अगर ये मेरा हाथ अपराध करता है तो मैं हाथ भी काटने के लिए तैयार हूं, इतना मैं भक्तों से प्रेम करता हूं, और इन्होंने आपके प्रति अपराध किया। तो इन्होंने शाप दिया था चतुष्कुमार ने कि आपको नीच योनि में, आप भौतिक दृष्टि में हो, ये सब देख रहे हो, शरीर के स्तर को देख रहे हो, इसीलिए आपको भौतिक संसार में जाना है। फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, जाना ही है, तो शास्त्रों में वर्णन है, दूसरे शास्त्रों में वर्णन है कि उन्हें चॉइस दिया गया कि आप 7 योनि भक्त बनोगे और फिर मेरे पास आओगे, या 3 योनि में बड़े आसुरिक प्रकार के भक्ति बनोगे और फिर वापस आओगे, कौन सी इच्छा है। पर जय विजय का सोचना यह था कि जितना जल्दी वापस आ जाए उतना अच्छा है, बोले 3 जन्म असुर योनि में प्राप्त करेंगे तो भी चलेगा, पर वही करेंगे तो तब उनका पतन होता है भौतिक आध्यात्मिक संसार से। और वहां दिति के गर्भ में ये दोनों पैदा होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। और जब पैदा होते हैं उसी समय में सारे अपशकुन पूरे विश्व में नजर आते हैं, और ये दोनों का असुरों का जन्म होता है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। यही दूसरे जन्म में चलकर रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र, ये 3 जन्म हुआ इनका। तो बताया जाता है कि जब ये पैदा हुए, हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने शुकर रूप धारण करके मार दिया, वराह रूप में, वराह देव के रूप में हिरण्याक्ष को मार दिया। जब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित हो गया कि वो कहने लगा कि मेरे भाई का बदला लेना ही है, मेरा भाई इतना आज्ञाकारी था, इतना अच्छा था, असुरों का अपना भाई बड़ा असुर अच्छा लगता है, तो इतना आज्ञाकारी था, जो मैं बोलता था एकदम ठीक ठाक करता था वो, और उसे मार दिया गया, तो इसीलिए वो उसकी होंठ कांपने लगती है गुस्से से, और वो वचन लेता है कि विष्णु का गला काट के उसका खून पी के रहूंगा मैं। ये आसुरिक भावना है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। उनका समझना है कि भगवान भी एक ऐसे भौतिक व्यक्ति है जिसको मार के खत्म किया जा सकता है। तो कहता है कि मैं विष्णु को मार डालूंगा, और हालांकि बुद्धिमान है, ऐसा नहीं है कि उसको वैदिक संस्कृति का, वैदिक वांग्मय का ज्ञान नहीं था। उसे मालूम है कि विष्णु को कहां से शक्ति मिलती है, शक्ति यानी पुष्टि मिलती है। तो तुरंत कहता है सारे असुरों को, जाओ जहां जहां यज्ञ हो रहा है भगवान विष्णु के प्रति, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उसको नाश करो। जहां जहां वर्णाश्रम धर्म का पालन हो रहा है नाश कर डालो। जहां ऋषि मुनि आश्रम में रह रहे हैं उसे नाश कर डालो। जहां गाय की सेवा हो रही है मार डालो उसे। गो सेवा जहां हो रही है, मतलब उन्हें मालूम है कि कहां कहां एक दैवी प्रकृति उत्पन्न हो सकता है, दैवी वातावरण कहां उत्पन्न हो सकता है, इन्हें मालूम है। और इसीलिए जानबूझकर वो उसी पर उसको ही खत्म कर देना चाहते हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य बता रहे थे, वो बड़े 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 नेशनल लेवल के लीडर्स को प्रचार करते हैं, तो वो बता रहे थे कि एक माजी प्रधानमंत्री एक देश के, उसको मिले वो और बातचीत कर रहे थे। तो उसने बोला, तुम्हारा संस्था जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा हमारे देश में, क्योंकि तुम हमारे जड़ को मार रहे हो। तुम्हारे हमारे जो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके जड़ पे तुम मार रहे हो, और हम लोग जानते हैं उसको। क्यों? क्योंकि तुम लोग बोलते हो कि मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं और व्यभिचार नहीं, ये तीनों चीजों पे तो हमारा सारा आर्थिक प्रगति चल रहा है। गैम्बलिंग में सबसे ज्यादा पैसा सरकार को मिलता है, जुआ के अलग अलग स्थिति में, और क्या बोलते हैं, मद्यपान, इंटॉक्सिकेशन, उसके ऊपर पूरा बिजनेस चलता है, आर्थिक स्थिति उसके ऊपर निर्भर है। और तुम लोग सीधे जड़ को मार रहे हो, जड़ मारोगे तो पूरा पेड़ गिर जाएगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि जड़ से उसको निकाल के फेंक दे। वो लोग भी नहीं चाहते, किसी न किसी तरह से जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि कहीं जहां भी भगवान के बारे में ज्ञान हो जाए उसको जड़ से काट दिया जाए। और उन्हें मालूम है कहां ये ऐसी संस्कृति बढ़ सकती है, तो उसको जड़ से निकालने का प्रयास। ये आसुरिक प्रवृत्ति है, जैसा रावण ने किया, मारीच और सुबाहु को भेजा ऐसे दंडकारण्य के ऋषि मुनियों में जहां यज्ञ हो रहा है विष्णु को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, बोले वहां जाके सारा गंदगी डालो और नष्ट कर दो। उन्हें उतना बुद्धि है, पर भगवत गीता कहता है मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। बुद्धिमान है पर मायया अपहृत ज्ञान, माया उनकी बुद्धि को हर ली, और ये असुर प्रवृत्ति है। क्यों ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति आ जाती है, किसके अंदर ये आसुरिक प्रवृत्ति आ जाती है, ये भी गीता में वर्णन है। भोग ऐश्वर्य प्रसत्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। गीता में भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, जो आसक्त हैं भोग और ऐश्वर्य के प्रति। भोग मतलब क्या? ये सब कुछ जो है मेरे भोग के लिए बनाया गया है। और ऐश्वर्य, उन्हें बहुत धन चाहिए, जितना भी वो तृप्त नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्यों? धन किस चीज का प्रतीक है? धन का मतलब है मैं प्रभु हूं, मैं मालिक हूं, मैं ईश्वर हूं। और भोग का मतलब क्या है, मैं भोगता हूं, सब मेरे लिए है और ये जो कुछ भी है ये मेरे लिए, जो भी अच्छे से अच्छा चीज है वो मुझे मिलना चाहिए। रावण की प्रवृत्ति भी ये थी, रावण के पास ऐसे ऐसे सुंदरियां थी, सर्वश्रेष्ठ देवकन्या उसके पास थी, पकड़ के लाया था सब जगह से, सर्वश्रेष्ठ राजकन्या को पकड़ के लाया था, सर्वश्रेष्ठ ऋषि कन्या को उन्होंने अपहरण करके उसने अपने लंका में सोने की लंका, और वहां इतनी सारी स्त्रियां उसके महल में थी, जब हनुमान जी गए तो देखे सब। पर उसे जब पता चला कि दंडकारण्य में एक व्यक्ति घूम रहा है, एक नर घूम रहा है और उसकी पत्नी जो है वो बहुत सुंदर है, तो बोला वो कैसे भोग कर सकता है, ये मेरे लिए चाहिए, वो भी माए मेरे को चाहिए। और जितना भी कोई बोले समझ में नहीं आता उनको, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त चेतसा, वो इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सोच नहीं सकते, जानते हुए भी नहीं जानते। ये नाम सुनिए हिरण्यकशिपु, हिरण्य मतलब क्या, सोना, और कशिपु का मतलब मुलायम गद्दा, क्या बोलते हैं, बेड, मुलायम सोने का पलंग, कशिपु मतलब मुलायम पलंग और हिरण्य मतलब सोना, तो उसका नाम ही सूचित करता है कि उसके जीवन का दो ही लक्ष्य था, हिरण्य और कशिपु। हिरण्य मतलब सोना, क्यों सोना, सोना मतलब सोना नहीं, सोना पैसा, क्यों सोना, क्योंकि वो चाहता था कि जितना सब मतलब धन चाहिए ताकि मैं मालिक और ईश्वर बनूं सब चीज का, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ज्यादा पैसा है, आजकल पैसा बोलता है, व्हेन मनी टॉक्स एवरीवन वॉक्स, अंग्रेजी में कहावत है, जब पैसा बोलता है तो दुनिया चलता है, उनका विश्वास ये है, उन्हें नहीं मालूम कि ये सब चलने के पीछे किसी और का हाथ है जो चला रहा है सबको, उनको लगता है नहीं वो सब कुछ नहीं चलता, ये खंभा भी चलेगा अगर पैसा बोलेगा तो, उनको विश्वास है। हिरण्य और कशिपु मतलब हो सब मेरे लिए। आसुरिक प्रवृत्ति का वर्णन है गीता में, पूरे 16वां अध्याय में उनका बायोडाटा दिया गया है आसुरिक योनि वालों का, बहुत सुंदर से, हाँ, ईश्वरोहम, सबसे पहले मैं ईश्वर हूं, ईश्वर कैसा बनेगा, जब तक पैसा तब तक ईश्वर, अहम भोगी, मैं ही भोगता हूं, यानी मैं ही भगवान हूं, भगवान नाम का कोई और नहीं है, मैं ही भगवान, अहम भोगी, सिद्धोहम, सिद्धोहम मतलब मैं परफेक्ट हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है, उल्टा इसके इसके विरुद्ध कोई बोले ना तो मूर्ख है, वो ना समझ है, उनको विश्वास है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। सिद्धो बलवान, मेरे जैसा बलवान आदमी कोई नहीं है, और सुखी, मैं सुखी हूं, उनको विश्वास है कि हम सबसे सुखी आदमी तो मैं ही हूं, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, ये उनका महामंत्र है, हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है, उन लोगों का ये महामंत्र है, और ये उनका उद्देश्य है, मिशन स्टेटमेंट, कैसा वो प्राप्त किया जाए। पर जब हिरण्यकशिपु क्या किया, उसने सबसे पहले उसने असुरों को भेजकर पूरे विश्व को, पूरे विश्व ने पूरे ब्रह्मांड को एक्चुअली वश में कर लिया, धीरे धीरे उसने देवताओं को भी हराया, वश में कर लिया, और फिर जाकर जब हिरण्याक्ष मरा था तो उसकी पत्नी, हिरण्याक्ष की पत्नी को और उसकी मां को, दीति को, शुद्ध वैदिक शास्त्र सुनाने लगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा जो है वो नित्य है, इन चीजों में रोना नहीं चाहिए, जो ऐसी इच्छा है वही होने वाली है, इस तरह से अगर आप हिरण्य कशिपु उवाच उसको निकाल लोगे और उसकी फिलोसफी सुनोगे तो ऐसा लगता है भगवद गीता ही बोल रहे हो। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग ऐसा परफेक्ट सिद्धांत क्यों सब बोल पाते हैं? जब इनको काम करता है वो लोग फिलोसफी बोलेंगे, जब काम नहीं करता तो सारा फिलोसफी को साइड में रखेंगे। जब अनुकूल है, क्या है वो, हम हिंदी में एक कहावत है, जरूरत पड़े तो गधे को भी बाप बोलते हैं। तो जब जरूरत पड़े, अनुकूल हो, तो फिलोसफी ले आते हैं, फिलोसफी के ऊपर आधार बोलते हैं। पर जब जरूरत नहीं है, उनका काम नहीं है, तो बोला क्या फिलोसफी, वो सब नहीं चाहिए हमको, मेरा मैं जो बोल रहा हूं सही है। ये आसुरी प्रवृत्ति है। जब चाहे गीता के कंधे पर बंदूक रख के मारो, देखो भगवद गीता कहता है, और जब प्रतिकूल है, मेरा मत जो है वो सही है, आजकल वो दुनिया लागू नहीं है, आजकल वो शास्त्र लागू नहीं है, ये उनका सोचने का तरीका है। और उनका और एक इसे बहुत सुंदर से वर्णन है किस प्रकार से, तो इस तरह से उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। ब्रह्मा, शिवजी और विष्णु के अलावा और सबको उसने अपने नियंत्रण में कर लिया, सारे देवी देवताओं को उसने अपने नियंत्रण में कर लिया, कोई यहां तक कि सारे देवताओं के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इंद्र हैं, वो भी हिरण्यकशिपु के नाम से कांपते थे। अगर वो थोड़ा भाव भ्रुकुटी को थोड़ा ऐसा प्रतिकूल स्थिति में ऐसा हिलाता था तो बोलते अभी पता नहीं क्या बोलने वाला ये, अभी क्या करने वाला ये, कहां इंद्रदेव, और वो भी हिलने दे, डर के मारे कांपते थे। ये आसुरिक प्रवृत्ति है। पिछले जमाने में ऐसे लोग होते थे, ऐसे खतरनाक, ऐसे शक्तिशाली असुर होते थे जो वैदिक ग्रंथों के आधार पर देवी देवताओं की पूजा करके ऐसा शक्ति प्राप्त करते थे। हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, वो बोला तुम लोग ये सब संभालो और मैं जाऊंगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा और एक ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि पूरे विश्व मुझे कोई, पूरे ब्रह्मांड में मुझे कोई नहीं मार पाएगा। तो तपस्या करते वो लोग। भगवत गीता में वर्णन है आसुरिक तपस्या क्या है। मतलब मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि कैसे जो व्यक्ति भगवत गीता को समझ जाता है वो ये सारे शास्त्रों का सार समझ सकता है और उसको आज के जीवन में कैसा लागू करना है वो समझ सकता है। देखिए भगवत गीता बताता है, हाँ यज्ञ, फिर दान और तपस्या किस प्रकार का होता है, भौतिक, अच्छा ये मराठी है, ठीक है आप सुनिए, आत्मपीड़ा करूर किंवा इतरांचा विनाशार्थ अथवा इतरांना व्यथित करण्यासाठी मूर्खपणे जो तपे केले जातात त्यांना तामसिक तप असे म्हटले जाते। मूढ ग्राहेण आत्मनो यत पीडया क्रियते तपः परस्य उत्साधनार्थं वा तत् तामसं उदाहृतम्। चार चीज बताया गया। तपस्या तो हर व्यक्ति करता है, पर यह तपस्या कैसा है, मूढ ग्राहेण आत्मनो, मूढ़ ग्रहण आत्मनो। और प्रभुपाद जी लिखते हैं हिरण्यकशिपु राक्षस की जो अविवेकी तप, इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। क्या तपस्या, मूढ़ ग्रहण आत्मनो, मूढ़ ग्रहण मतलब ऐसे चीज के लिए तपस्या करना जो आपको नहीं मिलने वाला, भगवान ने इस भौतिक संसार को सर्टिफिकेट दे दिया है दुखालयम और शाश्वतम। अब भगवान से भी होशियार बनने के लिए मैं तपस्या करूं और बोले मैं सुखालयम और शाश्वतम बनाना चाहता हूं इस भौतिक संसार को, वो तपस्या मूढ़ग्रह है। तुम जितना भी कर लो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान ने नियम बनाया इस संसार में, पर मैं तपस्या करूंगा कि नहीं, मृत्यु नहीं होना चाहिए, बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होना चाहिए। आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, ये हिरण्यकशिपु के छोटे छोटे नमूने हैं। आज मत सोचिए कि वो हिरण्यकशिपु का लीला वो सब महाराज वो तो सतयुग का है, आज के लिए लागू नहीं है। यही परिस्थिति है। क्या क्या तपस्या करते हैं लोग, खाना भूल जाते हैं, हजारों पूरा अपना जीवन, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में, रिसर्च वर्क में डालते हैं। किस लिए? बुढ़ापा को दूर करो, इस भौतिक संसार को सुखालयम शाश्वतम बनाओ। और वो तपस्या कर रहे हैं, अपना जान डाल रहे हैं, अपना जीवन डाल रहे हैं, जीवन का मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए, और उसके लिए चिंता नहीं है, पूरा जीवन कोशिश कर रहे हैं। इस भौतिक संसार के नियम को समझ लो, समझने के बाद उसको कंट्रोल करो। कंट्रोल करने का मतलब क्या? मैं ईश्वर, यही भावना है। जैसा उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु क्या करता था, उसका उसकी जो बहुत बड़ा राज्य था, राज्य मतलब दरबार, राज दरबार में बैठता था और सिर्फ इंद्र को ऐसा देखे तो उसको पानी बरसाना है, चाहे वो बरसात का ऋतु हो या नहीं हो, जुलाई अगस्त हो या नहीं हो। अगर दिसंबर में भी हिरण्यकशिपु ने ऐसा देखा, इंद्र को बरसाना ही पड़ेगा बारिश। और अगर गर्मी के सीजन में थोड़ा वायु को कौन सा टेम्परेचर महाराज, 35 डिग्री। एक्चुअली देवताओं को उसने ऐसा पत्थर थर कांप के रखा था, पृथ्वी को ऐसा देखे तो चाहे पानी डालो या खाद डालो या नहीं, फसल आ जाएगी डर के मारे। और आज के हमारे छोटे मोटे हिरण्यकशिपु लोग देवताओं को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, कम से कम अपने घर के वातावरण को कंट्रोल करेंगे। मेरे हाथ में रिमोट है, बाहर 35 डिग्री है, मैं 24 करूंगा, रिमोट दबाया 24 डिग्री, देखा भगवान उधर गर्मी रखा है, मैं ठंडी रखा हूं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, सत्गुण में तपस्या करके तुमको ऊपर जाने का नहीं, मैं विमान बनाऊंगा, रॉकेट बनाऊंगा, चंद्रमा में जाके बैठूंगा। ये हिरण्यकशिपु की प्रवृत्ति है। रावण ने बोला अपने राज्य वालों को, तुम लोगों को कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, सतुगुण में नियम पालन करने की जरूरत नहीं, मैं एक सीढ़ी बनाऊंगा बिना तपस्या किए, जो भी चढ़ सकता आराम से चढ़ जाएगा, स्वर्ग लोग चले जाना, बस फ्री ट्रिप। मतलब यांत्रिक विधि से बिना नियम का पालन किए फायदा मिलना है, पर नियम का पालन नहीं करेंगे। यानी मैं अपना एक राज्य बनाऊंगा जहां मेरा नियम चलेगा। तो क्योंकि ये छोटे मोटे आजकल के हिरण्यकशिपु लोग छोटा मोटा भौतिक संसार के एटॉमिक को, अणु को तोड़ तोड़ के उसको समझ लिए, थोड़ा बहुत अपने 450 ग्राम से उसको थोड़ा बहुत नियंत्रण कर लिए, तो उनको एक्चुअली लगता है कि बहुत जल्दी मुर्दे को भी जिंदा कर देंगे, बुढ़ापा को दूर कर देंगे। अभी हमने एक ऐसा डाई बनाया, उसको लगा लिया तो एक बुढ़ी औरत भी वो ब्यूटी पार्लर से बाहर आएगी तो 16 साल की लगेगी। और उनको लगता है कि हमने उसको बदल दिया, तुम्हारा दांत टूट गया, हम लोग ऐसा दांत बना के चिपका देंगे, एकदम फर्स्ट क्लास बन गया तुम्हारा, ये हो गया ये। पर ये नहीं समझते कि बुढ़ापा आने वाला है, बीमारी आने वाली है, मृत्यु आने वाली है। अच्छा, कोई पूछ सकता है, प्रभु जी हिरण्यकशिपु ने भी नियम का पालन नहीं किया पर वो सुख भोगा, और हम लोग नियम का पालन कर रहे हैं कितना तकलीफ उठा रहे हैं। ऐसा कैसा? एक्चुअली गलत बात है। अगर किसी व्यक्ति को लगे कि मैं प्रकृति को अच्छे तरह से समझकर, प्रकृति के नियम को अच्छे तरह से समझकर, अपनी बुद्धि से जानकर, उसको घुमा फिरा कर प्रकृति के नियम को बदल दूंगा, तो उस व्यक्ति की हालत क्या होती है? जितना प्रकृति के नियम से दूर जाएंगे उतना, सुनिए क्या होता है, मैं नहीं कहूंगा, भगवत गीता क्या कहता, सुनिए। हिंदी वाला है यहां भगवत गीता। चिंतां अपरिमीयां च प्रयान्तं उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावद् इति निश्चिताः आशापाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते कामभोगार्थं अन्यायेन अर्थ संचयान्। तो कहते हैं चिंतां अपरिमीयां च, हो सकता है अपने प्रकृति के नियम को वश में किया है, पर चिंतां अपरिमीयां, हमेशा आप चिंतित रहोगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है 21वीं शताब्दी में, आज सबसे बड़ी समस्या पूरे विश्व भर में, चाहे प्रगतिशील देश अमेरिका या रशिया या बड़े बड़े जापान जैसे क्यों ना हो, उनका मेन सब समस्या ये है, एड्स बीमारी नहीं है, कैंसर नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है मानसिक तनाव, मेंटल डिसऑर्डर्स। लोग सुइसाइड कर रहे हैं, रिश्ते नाते टूट रहे हैं, कोई खुशी नहीं है, सब लोग तनाव तनाव तनाव, टेंशन, मेंटल टेंशन। हालांकि अध्यात्म अगर भौतिक रूप से देखेंगे तो पिछले 100 साल में वैज्ञानिक रूप से हमने जितना प्रगति किया है पिछले कई सदियों से नहीं किया है हमने। आज एक यहां बैठकर ऑस्ट्रेलिया मतलब इस पृथ्वी के दूसरे ओर में अगर मेरे को बातचीत करना है, बटन दबाया, हेलो, बातचीत कर लिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। देखिए उनका उनका स्टेटमेंट भी उनका हृदय की बात बताता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हिरण्यकशिपु का भी वही प्रोग्राम था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, बटन दबाया हवा आना चाहिए, बटन दबाया कुछ भी हो बाहर। तो सूक्ष्म रूप से उनकी जो सोचने का तरीका है उनके वाणी में उनके वाक्यों में समझ में आ जाता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में और उसको भोग करो, तुम ईश्वर हो, तुम भोगी हो। पर ये सब है मुट्ठी में तो कर लिया, पर पीछे से एक मुट्ठी लग रहा है, उसका क्या करोगे? चिंतां अपरिमीयां, चिंतां अपरिमीयां। क्यों चिंतां अपरिमीयां? 5 साल का प्रहलाद हिरण्यकशिपु को यही बोले। हिरण्यकशिपु ने सबसे अच्छे ट्यूशन टीचर को लगाया प्रहलाद महाराज के लिए, क्योंकि पूरे कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरे दुनिया को उसने मुट्ठी में किया था, पूरे ब्रह्मांड को, तो पूरे इसमें से सबसे बेस्ट टीचर। जैसा कोई करोड़पति बाप होता है तो अपने बेटे को कैम्ब्रिज भेजेगा, बेस्ट जगह भेजेगा, पर अगर वो अरबपति हो तो कैम्ब्रिज के सबसे बड़े प्रोफेसर को अपने घर में लाके बोलेगा चलो मेरे बेटे को सिखाओ। हिरण्यकशिपु तो देवताओं को नियंत्रण करने वाला था, तो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य के बेटे शंड अमर का बहुत ही बुद्धिमान, सारे वेदों को जानने वाले, और वेदों में सिर्फ वो ज्ञान लेते थे कैसा हम दुनिया को मुट्ठी में कर ले, साम दान दंड भेद। हिरण्यकशिपु ने कहा इनको मेरे जैसा बनाओ, हिरण्यकशिपु जूनियर बनाओ इसको। पर प्रहलाद को दूसरे प्रोफेसर मिल गए थे। जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गए थे तो इंद्र ने कयाधु को उठा लिया और कयाधु को ले जा रहे थे इंद्र लोक में, बोले स्त्री को तो मार नहीं सकते, देवता है वो, बोले ये बच्चा पैदा होगा उसको मार दूंगा, तब तक मेरे घर में रहेगी। तब तक वहां नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने इंद्र को बोला क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें सच्ची देवी के साथ देखता था, अब ये कौन है साथ में? बोले नहीं नहीं ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है कयादु। बोले इसके क्यों उठा के ले आए, इसके घर में हिरण्यकशिपु जूनियर है, अब एक को संभालने को मुश्किल हो रहा है, ये दूसरा भी आ जाएगा तो क्या करूं मैं? बोले अभी से मार दूंगा इसको मैं। पर तुरंत नारद मुनि ने कहा अरे मूर्ख तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम इस कयादु के गर्भ में अभी जो बच्चा है ये एक महाभागवत वैष्णव है, तुरंत छोड़ दो इसे, ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो तुम, छोड़ दो इसे। और नारद मुनि ने कयादु का 3 बार परिक्रमा किया और उसको दंडवत प्रणाम किया, कयादु को नहीं उनके गर्भ में स्थित महाभागवत प्रहलाद महाराज का। ये देवताओं का लक्षण है। नारद मुनि के कहने पर हिरण्य इंद्र को डर था, इंद्र को डर यह था कि बाई चांस अगर दूसरा हिरण्यकशिपु निकला हो, पर उसको विश्वास था कि नारद मुनि व्यक्ति कह रहे हैं तो होना ही चाहिए। जैसे देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु, नारद मुनि पे विश्वास था, अगर नारद मुनि कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका वाणी सत्य है। उस श्रद्धा के कारण, हालांकि उसे डर था, पर उस श्रद्धा के कारण उसने कहा कि ठीक है। नारद मुनि ने वैयक्तिक रूप से कयादु को अपने आश्रम में एक स्थान दिया और हर रोज कयादु को सुंदर हरिकथा सुनाते थे। कयादु बेचारी अपने पति के सोच में थी, बेटे के सोच में थी, उतना ध्यान से नहीं सुनी, भूल गई बेचारी, पर गर्भ में बैठे प्रहलाद महाराज ने बड़े ध्यान से सुना। इसीलिए 5 साल के उम्र में उन्होंने हिरण्यकशिपु का डायग्नोसिस कर दिया, तुरंत हिरण्यकशिपु को शंडामर का के पास प्रहलाद महाराज को भेजा गया और 5 साल की उम्र में हिरण्यकशिपु ने कहा शंडामर का को बोलो आज मेरे बच्चे को ले जाओ, ले आओ इधर। तो कयादु ने उसको अच्छी तरह से सजाया, सजा के हिरण्यकशिपु महाराज के सामने प्रस्तुत किया, पिताजी के सामने कहा हिरण्यकशिपु आजान बाहर सा शरीर बैठा हुए, आओ बेटे बैठो, 5 साल का छोटा लड़का कौन है, कोई वहां है 5 कितना उम्र है इसका, ए तुझे उम्र कितनी रे, वही कितनी वही वही कितनी, ये देखिए मालूम ही नहीं, खड़े हो जाए 5 साल में उम्र, बच्चे को मालूम ही नहीं होता उम्र,
उम्र
इतना। प्रहलाद महाराज ऐसे थे, ये उनके चरण चिन्हों पे चल रहा है अभी इस उम्र में, इसको मालूम ही नहीं कितना उम्र क्या है। ऐसे बच्चे को हिरण्यकशिपु ने बैठाया अपने गोद पे और प्रेम से हृदय गदगद हो गया, अपने बच्चे को देखकर किसको अच्छा नहीं लगता। और वैदिक संस्कृति में अगर आशीर्वाद देना है बच्चों को तो उसके बाल को सूंघते हैं, उसके बाल को सूंघा तो उसका आयु ज्यादा बढ़ता है, तो बाल सूंघा, प्रेम से आंसू भर रहे थे हिरण्यकशिपु, जैसे राक्षस के भी आंसू बह रहे थे। बाघ होता है ना, बाघ अपने छोटे बच्चे को देखता तो उसके आंखों में भी आंसू आया, वात्सल्य रस। तो बैठाया, पूछने का बेटा तू स्कूल में जा रहा है ना, स्कूल में बहुत कुछ सीखा होगा, सबसे अच्छा चीज क्या सीखा सुना बेटा। कभी कभी हम लोग पूछते हैं ना माँ बाप बच्चे से पूछते हैं आज क्या सीखा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओ बहुत अच्छा बोलता है तू, ये राइम सिखाया क्या आज, वेरी गुड, स्वाभाविक है। तो पिता बैठे गोद में बैठा है और पूछे सबसे अच्छा चीज तेरे को क्या लगा बता सुना। प्रहलाद महाराज तुरंत जैसे एक नाड़ी शास्त्र होता है, ऐसा नाड़ी पकड़ के उसका अंदर का सारा एक्सरे बता देगा क्या क्या तकलीफ है, सिर्फ उसके गोद में बैठ के उसका एनालिसिस कर दिया प्रहलाद महाराज ने। और तुरंत कहे प्रहलाद महाराज तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहाम हित्वात्म पातम गृहमंधकूपम वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत।
सीधा डायग्नोसिस कर दिए, तत् साधु मन्ये। आप पूछ रहे हैं ना सबसे अच्छा चीज मैंने आज तक क्या सीखा है, तत् साधु मन्ये, उसको मैं सबसे श्रेष्ठ समझता हूं, हे असुरों में श्रेष्ठ। फिर अब बोलिए आप असुर है, असुरों में श्रेष्ठ हो, ऐसे छोटे मोटे असुर नहीं, सुपर असुर, समैन सुपरमैन, मार्केट सुपर मार्केट, तो ऐसा असुर छोटे मोटे सुपर असुर, असुरवर्य, आर्यवर्य बोलते हैं ऐसा असुरवर्य, मतलब इंडायरेक्टली उसको बोले तू असुरों में श्रेष्ठ है, क्या करेंगे तेरी बुद्धि ऐसी है। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना, जिस व्यक्ति ने भी एक देह को प्राप्त किया है, हालांकि तुम्हारा ब्रह्मा जी के वरदान से वज्र जैसा कठोर हो, पर तू आत्मा नहीं है, सच्चिदानंद विग्रह नहीं है तेरा, ये तूने देह प्राप्त किया है ना, तो कुछ भी तू कर ले असुरवर्य, तू असुरों में श्रेष्ठ हो सकता है। देही नाम, जिसने भी देह प्राप्त किया है, सदा समुद्विग्न धियाम, धिया मतलब बुद्धि, उसकी बुद्धि सदा सम उद्विग्न, उद्विग्न मतलब चिंता, चिंता चिंताम अपरिमेय, तूने पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण में किया है, देवताओं को नियंत्रण में किया है, लोगों को नियंत्रण में किया है, और तेरे मार्गदर्शन पे सब कुछ चल रहा है, भौतिक भोग ऐशो आराम से तू जी रहा है, पर सदा समुद्विग्न ध्यान, तू हमेशा चिंतित रहता है, क्यों? उसका डायग्नोसिस भी तुरंत बोल दिए, सदा समुद्विग्न ध्यान असत ग्रह, तू एक असत चीज को बैठा है और सोच रहा है कि हमेशा हमेशा के लिए रहे। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग, हमारा मंदिर चौपाटी में, गिरगांव चौपाटी गुरुवे में, तो वहां समुद्र है, समुद्र के तट पर बहुत सारे माँ बाप शनिवार के रात को या रविवार को आते हैं उधर शाम के वक्त, और छोटे बच्चों को साथ लेके आते हैं समुद्र में खेलने के लिए, समुद्र के आसपास, और वहां ये बलून गुब्बारे है ना, गुब्बारे, वो बलून बेचने वाले सब आते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, सीधा बच्चों के सामने जाते हैं, बच्चों के सामने जाके उनके आंखों के सामने ऐसे ऐसे हिलाते सबको, रंग बिरंगी होता है और कुछ ऐसा कुछ खिलौने होते हैं, ट्र करके आवाज करते घुमाए तो ऐसे, तो उनके कान में ट्र आवाज, उनके आंख के सामने रंग बिरंगी बलून, उनके नाक के सामने भी कुछ ऐसा कुछ भी मतलब ऐसा चीज, और बच्चों को लगता है हे माला पाइजे, हे माला पाइजे, मतलब चाहिए ही, रोने लगते बच्चे। पिताजी कहता है अरे ये सब क्या, तेरे को अच्छा चीज कुछ दिलाऊंगा, ये सब फूटने वाला है, चार मिनट का, चार दिन का, चार घंटे का भी नहीं है, नहीं ये ही चाहिए मैं। और वो बलून वाला इतना होशियार होता है, वो माँ बाप के सामने ऐसा हिला नहीं था, उनके आंखों के सामने नहीं हिलाएगा, उसको मालूम है, बच्चों के सामने हिलाता है, क्योंकि बच्चे जो है कम बुद्धि वाले, उनको असत चीज सत लगने लगता है, उनको लगता है ये बलून परमानेंटली मैं रखूंगा मरने तक, तो ये कब तक रहेगा, पिता को मालूम है पर वो नहीं समझते। इस तरह से ये बचपना है, ये आसुरी प्रवृत्ति जो है ये बचपना है, शरीर को मैं परमानेंट करूंगा, वाह। अरे ब्रह्मा जी ने खुद कहा मेरा शरीर परमानेंट नहीं है, वत्स तू मेरे से क्या वर मांग रहा है, तो फिर उसने अपनी बुद्धि लगाई, सुबह नहीं मरूंगा, शाम को नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं मरूंगा, जमीन में नहीं मरूंगा, पाताल में नहीं मरूंगा, जमीन के अंदर नहीं मरूंगा, पानी में नहीं मरूंगा, घर घर में अंदर नहीं मरूंगा, घर के बाहर नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, आपकी बनाई गई सृष्टि से किसी चीज से भी नहीं मरूंगा, 84 लाख दिनों में कोई नहीं मार सकता मेरे को। और ब्रह्मा जी बोल रहे तथास्तु 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 तथास्तु, और क्या चाहिए, पूरा 100% उसने इंश्योरेंस कर लिया, ऐसा नहीं मरूंगा, ऐसा नहीं मरूंगा, ऐसा नहीं। मतलब इस तरह से हम देखते हैं साइंटिफिक तथाकथित आसुरी प्रवृत्ति के वैज्ञानिक, उनको लगता है कि ऐसा ऐसा कर दिया ना मरेंगे ही नहीं हम लोग, पर सदा समुद्विग्न ध्यान। इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, पर सबसे बड़ी समस्या आज की दुनिया में है, हमेशा लोग तनाव चिंतित है, کیوں؟ اسد گرہ اسد چیزوں کو پکڑ کے بیٹھے. کتنا دن تک یہ شریر کو رکھو گے تم؟ شریر کا ایک اپیوگ ہے, اس کا اپیوگ کرو اور مرنے سے پہلے جیون سفل کرو. شریر ایک سادھن ہے, سادھن کے دوارا سادھی کو پراپت کرنا چاہیے. جب تک شریر ہے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے کرو بھکتی. ہتوا آتم پاتم, آتم ہتیا کرنے کی جو رائل راج مارگ ہے اس میں سے ہٹ کر گرہم اندھکوپم. گرہم, گرہم مطلب کیا؟ ایسا گھر جو اندھکوپ ہے. گھر کو پرہلاد مہاراج نے اندھکوپ کیوں بتایا؟ وہ گھر جس کا کیندر, جس کا جو مالک ہے سمجھتا ہے میں یہ شریر ہوں, یہ میری پتنی, یہ میرے بچے, یہ میرا گھر اور میں یہاں کا بھوکتا ہوں, میں یہاں کا نیانترن کرتا ہوں, میں جو کہتا ہوں ویسے چلنا چاہیے, میرے آگیا پر سب کچھ چلنا چاہیے. وہ بڑے اندھکار کنویں میں گرا ہوا ہے, جنا سمو ہو یا محمد, اور وہی ویکتی سمجھتا ہے کہ بھگوان اس گھر کے مالک ہیں, ہم اس کے بس کیئر ٹیکر, دیکھ بھال کرنے والے ہیں, اور یہ میری پتنی, میرے بچے, یہ سب جو ہے یہ سب ان کی سیوا کے لیے ہے, اور سب کو ان کا دیکھ بھال کرنا تاکہ وہ بھگوان کی سیوا میں اچھی طرح سے لگے. وہ گھر گھر نہیں, وہ ویکنٹھ ہے. پر ہرنے کے سبو کی بھاونا الگ تھی, وہ سمجھ رہا تھا کہ میں گھر کا مالک ہوں اور وسودھیو کٹمبکم, پر میرا کٹمبکم میرا کٹمب ہے, وہ سب کچھ میرے نیانترن میں چلنا ہے. ہتواتم پادم گرہمند کوپم ونندتو, بولے ون کو جاؤ. کون سے ون؟ پربھوپاد بتاتے برنداون. ونم گتو, اور ون میں جا کے کیا کرنا ہے؟ بندر جیسے پھل توڑ کے نہیں کھانا, ہریم آشرے لیتا. برنداون میں جا کر ہری کا آشرے لو. یہ جیون کا ادیش ہے, یہ سب سے مہتوپورن شکشا ہے, اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. کرپیا آپ وہ کرو, اور یہ میں نے سیکھا ہے, اس سے بڑھ کر میں نے اور کہیں کچھ بھی نہیں سیکھا ہے. آپ پوچھ رہے ہو نا سب سے اچھا چیز میں نے کیا سیکھا ہے, یہ میں نے سیکھا ہے. کرپیا پتا جی آپ اصل میں شریشٹھ ہو, آپ اسے سویکار کرو, کیونکہ آپ جس مارگ میں چل رہے ہو ہمیشہ چنتت رہو گے, چنتا سے مکت نہیں ہو پاؤ. یہ پربھوپاد جی کا یوگدان ہے, پربھوپاد جی کا ہمیں یہ یوگدان ہے. انہوں نے ان کی کرپا سے ہمیں ایک برنداون کا آشرے دیا ہے, کولہاپور میں بیٹھے برنداون کا آشرے دے دیا. صبح میں بیلگام میں بول رہا تھا, ہم لوگ مندر میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا, پربھوپاد جی نے کہا کہ میرا گھر, میرے جتنے سارے مندر ہیں وہ ویکنٹھ ہیں. کیوں ویکنٹھ ہے؟ ویکنٹھ کا مطلب کیا؟ یہی چتوش کمار جب ویکنٹھ گئے تھے جے وجے کو شاپ دینے سے پہلے, انہوں نے دیکھا کہ ویکنٹھ میں دو چیز ہیں بہت ہی پرمکھ. ویکنٹھ میں ہر ایک ویکتی اپنا نجی سوارتھ نہ سوچتے ہوئے بھگوان کی پرسنتا کو سامنے رکھتا ہے. جس حد تک ہم اپنے سوارتھ کو بھگوان کی پرسنتا سے پرمکھتا دیتے ہیں, اس حد تک ہم چنتت ہو جائیں گے, وچلت ہو جائیں گے, سچا سکھ, من کی شانتی اور آنند نہیں ملے گی. جب نتے بدو سوارتھ گتے نبشنو دراشیا یہ بہیرتمان پربندھ رکھے تھے نتے بدو سوارتھ. ارے سوارتھی بنو, ہر ایک ویکتی کو سوارتھی بننا چاہیے. کیا سوارتھی بننا چاہیے؟ بولے ہاں. سوارتھ کا مطلب کیا؟ سو ارتھ, سو مطلب ہم اور ارتھ مطلب مولیوان چیز. پہلے یہ جانو کہ ہم کون ہیں, ہم شریر نہیں آتما ہیں, اور آتما کا سوارتھ کیا ہے؟ نتے بدو سوارتھ گتیم ہی وشنو, وشنو کی شرن جانا ہمارا سب سے بڑا سوارتھ ہے. स्वार्थ और निस्वार्थ दोनों हो जाता है उसमें अगर हम भगवान की शरण गए। जैसे कई बार हमने समझाया है, रूपा जी समझाते हैं कि उंगली शरीर का अंश है और ये उंगली अगर सच्चा सुख प्राप्त करना चाहे तो क्या करे, ये उंगली कहेगा एक प्लेट हलवा बनाऊंगा और उसको मैं खुद भोग करूंगा, भोग नहीं कर पाएगा वो। पर उंगली कहेगा मैं शरीर का अंश हूं, मेरा काम है हलवा लेना और मुंह में डाल देना। मुंह से अगर वो खाना पेट में गया तो ये उंगली दष्टपुष्ट हो जाएगा, उसके परिवार के पांच लोग भी सब दष्टपुष्ट हो जाएंगे, उसके बगल घर वाले भी दष्टपुष्ट हो जाएंगे, पूरा सृष्टि दष्टपुष्ट हो जाएगा। जैसे पेट में खाना डालने से सारे इंद्रियां दष्टपुष्ट हो जाती है, जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालने से धड़ डाली पत्ता फूल फल सब हरा भरा हो जाता है, इसी तरह से सच्चा स्वार्थ है हम भगवान के अंश मम युवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, सनातन भगवान के अंश है, अंश उनकी सेवा करना ये वैकुंठ है। और दूसरा वैकुंठ का लक्षण है कि वहां ईर्ष्या नहीं होता। हर एक व्यक्ति सोचता है कि ये सामने जाए मैं पीछे रहूं। सुंदर सुंदर कोयल है, सुंदर सुंदर तोते हैं, वो गा रहे हैं, पर एक भौंरा अगर गुनगुनाते हुए आता है तो अच्छे अच्छे कोयल तोते चुप हो जाते हैं, तो इसको गाने दो। ये हरि कथा भृंगादि पे हरि कथा में वो गाय माने, वो गा रहा है ना, ठीक सुनूंगा उसका आनंद लूंगा। कथा गानम नाट्यम गमनम, भौतिक आध्यात्मिक संसार में हरेक कथा गान है। क्यों? क्योंकि जो भी बोलते हैं वो भगवान का गुणगान है, उत्तम श्लोक। और कथा गानम नाट्यम गमनम, हरेक कदम रखना नृत्य है। क्यों नृत्य है? क्योंकि भगवान की सेवा के लिए कदम उठा रहे हैं लोग। तो जिस जगह में भक्त लोग एकत्रित होते हैं इस दूर चीज को रखते हुए, निजी स्वार्थ को अलग रखकर भगवान की प्रसन्नता को सामने प्रामुख्यता देकर, जहां अपने को पीछे रखकर दूसरों को भगवान प्रभु की कृपा प्राप्त करने में उत्तेजित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, वो जगह भौतिक संसार में होकर भी भौतिक संसार का जगह नहीं है, वो वैकुंठ है। तो जब हम ये पुस्तक पढ़ते हैं, जब हमने पुस्तक पढ़ा तो आपको अच्छा लगता है, प्रभुपाद जी के शब्द अच्छे लगते हैं, पर जब तक एक ऐसा वातावरण नहीं हो जहां आने पर हमें इस पुस्तक के जो सिद्धांत है इसका अनुभव हो कम से कम थोड़ा, तब हमको पुस्तक पे विश्वास बढ़ता है। नहीं तो हमको लगता है हाँ पुस्तक अच्छा है, इसका फिलोसफी भी अच्छा है, पर ये सब आज की दुनिया में प्रैक्टिकल नहीं है, हो ही नहीं सकता कि हर एक व्यक्ति निजी स्वार्थ को हर एक अपने आप को सामने रखता है। तो जिस हद तक ऐसा वातावरण लाएंगे उस हद तक वैकुंठ का अनुभव करेंगे, और जो भी व्यक्ति उस वातावरण में प्रवेश करेगा उसे विश्वास होगा कि हाँ ऐसा जगह भी है, क्योंकि मैंने यहां एक झलक देखा है ऐसा, जहां हर एक व्यक्ति एकमात्र उद्देश्य से एकत्रित होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए और निजी स्वार्थ को छोड़कर, और मत्सरता या फिर ईर्ष्या को दूर रखकर दासत्व के भाव में सबको मदद करने की इच्छा से। वो वैकुंठ है। इसी लिए देखिए इस संस्था में प्रभुपाद जी ने एक नियम बनाया, प्रभुपाद ये वैष्णव परंपरा है कि हम एक दूसरे को प्रभु कहते हैं, प्रभु जी प्रभु जी। प्रभु जी का मतलब क्या, कि आप प्रभु हैं मैं आपके दास हूं। थोड़ी सी देखिए, अपने प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो कह रहे थे कि ये मंदिर जो प्रभुपाद जी ने स्थापित किया, वो बोले आध्यात्मिक संसार का वो दूतावास है, आध्यात्मिक संसार का दूतावास। मालूम है या नहीं मालूम, आप अगर दिल्ली में जाइए, चाणक्यपुरी नाम का जगह है जहां सब देशों के दूतावास हैं, अमेरिकन दूतावास, अफ्रीकन दूतावास, पाकिस्तानी दूतावास, सब दूतावास। आप अगर अमेरिकन दूतावास में जाएंगे, उस दूतावास के अंदर बहुत भारत सरकार का नियम नहीं है, उस कंपाउंड में प्रवेश किए तो वहां अमेरिकन रूल, हालांकि भारत में है, पर उस दूतावास के प्रांगण में आप प्रवेश कर लिए ना कंपाउंड में, तो वहां भारत का नियम लागू नहीं है, अमेरिका का नियम लागू है। उस दूतावास के अंदर वहां के लोग जो खाते हैं वो अमेरिकन खाना होता है, वहां का जो वेशभूषा है वो अमेरिकन, वहां का जो बोलचाल है अमेरिकन, वहां का पेपर पेंसिल सब कुछ इंपोर्टेड अमेरिकन। तो कोई वहां प्रवेश करेगा तो उसको लगेगा कि मैं इंडिया में हूं या अमेरिका में आ गया। इसी तरह से प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरा मंदिर जो है वो वैकुंठ में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां का वेशभूषा वैकुंठ का वेशभूषा, धोती कुर्ता और साड़ी, यहां का खान पान वैकुंठ का खान पान, जो भी यहां खाते हैं प्रसाद, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद, यहां का बोलचाल वैकुंठ का बोलचाल, मतलब क्या, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बोलेंगे नहीं तो नहीं बोलेंगे, यहां की भाषा वैकुंठ की भाषा। हर एक व्यक्ति दूसरे को प्रभु कहेगा और अपने आप सिर्फ कहेगा नहीं, मानेगा और अपने आप को दास मानेगा। जिस हद तक इस नियमों का हम पालन करेंगे उस हद तक उस आश्रय को ढूंढ पाएंगे। वनम गतो यत हरिम आश्रय, हरि का आश्रय और हरि जन, हरिजन ये शब्द थोड़ा दुर्भाग्यवश आजकल भारत में बोले तो पिटाई हो जाएगा, भक्त जनों का आश्रय, और ये आश्रय जहां एक्चुअली मिलेगा वो वहां आश्रय ना जो भी, वही एक जगह है जहां चिंता रहित हो सकता है आदमी। वही कुंठ, कुंठ मतलब चिंता, हमेशा एंजाइटी, मृत्यु आ रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, बीमारी आ रहा है, वो वहां नहीं है। जिस हद तक हम उनके नियमों को पालन करें, ये प्रहलाद महाराज का शिक्षा है, महाजनो ये नगदस्य पंथा, हम 12 महाजन हुए, प्रहलाद महाराज उनके एक महाजन है, उनके शिक्षाओं को आज के दिन अगर सोचेंगे, उसके अगर एक श्लोक को भी अगर अपने जीवन में हम उतार लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, और जिस हद तक नहीं उतारेंगे उस हद तक हिरण्यकशिपु की जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर प्रवेश करेगी। आप मत समझिए कि हिरण्यकशिपु सिर्फ बाहर के लोग हैं, हम लोग सब यहां पर लाके अनुयायी हैं, नहीं, पिछले युगों में असुर और दानव दूसरे दूसरे लोकों में रहते थे, त्रेता युग में एक ही देश में दूसरे दूसरे प्रांतों में रहते थे, रावण था लंका में, प्रभु रामचंद्र थे अयोध्या में, दूसरे दूसरे देशों में, द्वापर युग में एक ही परिवार में आ गए मामा कंस और भांजा कृष्ण, और कलयुग में असुर और देवता गुण दोनों एक ही व्यक्ति के हृदय में निवास है। हमारे अंदर हिरण्यकशिपु भी है, हमारे अंदर प्रहलाद भी बोल रहा है, पर बेचारा प्रहलाद 5 साल का है ना, हिरण्यकशिपु ने उसको दबा के रख दिया चुप। जिस हद तक हमारे हृदय में हिरण्यकशिपु का राज चल रहा है, प्रहलाद को कोई सुनने वाला नहीं। इसी लिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु नरसिंह देव आइए और हिरण्यकशिपु को फाड़ के निकालिए और प्रहलाद को बोलने दीजिए, प्रहलाद की शिक्षा को पाने का शक्ति दीजिए। ये अगर प्रार्थना करेंगे तो आज का दिन सफल, अगर नहीं करेंगे थोड़ा पूजा किया प्रसाद खाया जय नरसिंह देव भगवान की जय चले गए तो वो एक सात्विक मनोरंजन हो गया, बस पूजा किया पाठ किया अगरबत्ती हिलाया बस। अभी तो हम बड़े धार्मिक का है, बाहर जाके वही काम चालू, हिरण्यकशिपु के प्रतिनिधि टीवी के सामने बैठकर कैसा हिरण्य जमाना है कैसा कशिपु निकालना है बस। इधर नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ और वहां हिरण्यकशिपु का प्राकट्य फिर से तो फिर क्या फायदा, तो फिर क्या फायदा। तो एक्चुअली आज के दिन का महत्व है कि ये जानना कि क्या लेना चाहिए हमें, आज के दिन का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए, ये परंपरा का योगदान है। प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने बताया कि ये हिरण्यकशिपु वहां नहीं है, इधर है, इधर है। और प्रहलाद की जो शिक्षा है वो कहीं तो है अंदर पर वो दब गया है, और इसीलिए अगर हम प्रार्थना करेंगे तीव्रता से तो ये नरसिंह देव का अवतार आज हमारे हृदय में होना चाहिए और हिरण्यकशिपु को फाड़ के निकालना। तम भृंगम, एक्चुअली रूपा जी ने हर इस्कॉन मंदिर में हर रोज तुरंत मंगल आरती के बाद नरसिंह आरती शुरू किया। क्यों, एक भक्त बता रहे थे और हम भी सोच सकते हैं, इसका तीन रूप से देखा जा सकता है, तीन कारण। एक, नरसिंह देव जो हैं वो विघ्न विनाशक, विघ्न के विनाशक हैं। और सबसे बड़ा विघ्न क्या है, सबसे बड़ा विघ्न है जीवन की सफलता को प्राप्त करने में कोई बाधा जो आ जाए, और वो बाधा बाहर नहीं है अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि। तो हम नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं कि कृपया वो ये सब हमारे हृदय से निकाल दें। और दूसरा चीज है ये जो वैष्णवों का संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसमें हरेक व्यक्ति अच्छे उद्देश्य से आता है अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए और इस संदेश को प्रचार करने के लिए सबको। प्रहलाद महाराज की यही इच्छा थी। प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं यहां इसलिए नहीं आया, नरसिंहदेव कहते हैं कि वत्स तुमने मेरे लिए इतना तकलीफ झेला, चलो मैं तुम्हें भगवत धाम ले जाता हूं। प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रायेण देव मुनयो स्वामी मुक्ति कामान मौनम चरंति विजने न परात्मनिष्ठा। हे प्रभु, बहुत सारे मुनिगण हैं जो हिमालय में बैठ के अपना उद्धार के लिए मौनम मौन धारण किए हुए हैं, उनको दूसरे जनों की चिंता नहीं है, पर मैं भी ऐसे सड़ रहा था इस भौतिक संसार में, मेरे गुरु नारद मुनि ने मुझे ऐसे गंदे नाली के कीड़े जैसा स्थिति से निकालकर आज मुझे एक वैष्णव बनाया है, तो उनका जो ऋण है वो मैं कैसे चुका सकता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब तक ऐसे मूर्ख लोग यहां रहेंगे, जब तक सब वापस नहीं जाते, तब तक मैं वहां रहूंगा और उनको मदद करते रहूंगा। यही प्रभुपाद जी की भी इच्छा थी। प्रभुपाद राधा दामोदर में वृंदावन में निवास कर रहे थे, पर ऐसा वैकुंठ जैसा वातावरण को छोड़कर हिरण्यकशिपु का राज्य न्यूयॉर्क में चले गए, जहां यही दो चीज है, भोग और ऐश्वर्य। और वहां जाकर वहां के लोगों को अपने सदगुरु के चरणों में ले आए, भगवान के चरणों। तो इस तरह से दूसरी प्रार्थना नरसिंह देव का हम इसलिए करते हैं कि जो भी ऐसे भक्त प्रामाणिकता से भगवान की शरण लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको उनकी भक्ति का संरक्षण हो, ताकि विश्व भर में इस संदेश का प्रचार हो, जितने ज्यादा वैष्णव हो उतना अच्छी बात है, प्रसन्न होना चाहिए। और तीसरी चीज है कि ऐसे करोड़ों करोड़ों बद्ध जीव है पूरे भौतिक सृष्टि में, उनके जीवन में जो अमंगल चीज आ गया है अज्ञान, उनका अज्ञान भी दूर हो। तो हम वैयक्तिक रूप से अपनी भक्ति के लिए, वैष्णवों की भक्ति में प्रगति होते रहे इसके लिए, और पूरे सृष्टि में, भौतिक सृष्टि में जितने सारे बद्ध जीव हैं उनका भी भलाई हो, उनके जो विघ्न है सबसे बड़ा अज्ञान वो दूर हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं नरसिंहदेव से। तो अगर हम वो करेंगे तो बहुत ही आज के दिन का पूरा हम लोग फायदा उठा सकते हैं, और खास करके उसी दिन करना। ऐसे नरसिंहदेव की कृपा तो सब दिन उपलब्ध है, पर खास उनके आविर्भाव दिवस, भगवान के आविर्भाव दिवस में वो दिवस ही मूर्तिमान स्वरूप है कृपा का। नरसिंह चतुर्दशी जो दिवस है वो दिवस ही एक मूर्तिमान स्वरूप है नरसिंह देव के कृपा का। इसी दिन, आज के दिन जो प्रार्थना करते हैं तीव्रता से, प्रामाणिकता से, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति के साथ, तो भगवान की कृपा निश्चित होगी। तो बहुत बोल चुका, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं नरसिंहदेव के बारे में, एक एक श्लोक के ऊपर एक्चुअली हफ्ते भर बोला जा सकता है। प्रहलाद महाराज की एक एक शिक्षा जो है इतने महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर देकर, छोटी सी बात, कभी कभी लोगों का प्रश्न होता है कि भगवान ने नरसिंहदेव इतना देर क्यों किया हिरण्यकशिप को मारने के लिए, इतना तकलीफ प्रहलाद को सहन करना पड़ा। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा यह प्रश्न, बोले भगवान भी कैसा आदमी, इतना मारा उसको, पैर के नीचे डाला, हाथी के नीचे उछला, बिच्छू के इसमें डाला, गरम तेल में डुबाया सब जगह, और कुछ किया क्यों नहीं। तो मैंने एक बार एक व्यक्ति से पूछा था, एक सीनियर व्यक्ति से, सन्यासी से पूछा था, उन्होंने कहा कि दो ही कारण, भक्तों को जब भगवान, शुद्ध भक्तों को खास भगवान ऐसी परिस्थिति में डालते हैं तो उसका दो कारण होता है, एक है फॉर देयर प्यूरिफिकेशन एंड देयर ग्लोरिफिकेशन, उनकी शुद्धिकरण के लिए, और उनका गुणगान पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सब लोग जाने। क्योंकि उनकी शुद्धिकरण कैसा, वो तो ऑलरेडी शुद्ध है, उनकी शुद्धिकरण कैसा, जैसे सोने को, सोना चमक रहा है और सोने को अगर आग में डाला जाता है तो उसके अंदर बाई चांस भी थोड़ी गंदगी हो तो वो निकल जाता है और चमकता हुआ निकलता है सोना, और ज्यादा चमकने लगता है आग में डाला तो। यहां कोई सोना सोनार आदमी है, बहुत सारे आप लोगों को मालूम होगा, सोना को शुद्ध करना है तो आग में डालो और चमक के निकलता है, पर वही अगर पीतल का है वो अंदर डालो तो काला कलूटा हो जाता है पूरे एकदम। इसी तरह से जब भक्तों को ऐसी परिस्थिति में डाला जाता है तो उनका भगवान के प्रति ध्यान, भगवान के प्रति जो कॉन्सेंट्रेटेड फोकस और बढ़ जाता है, तीव्रता बढ़ जाती है, दूसरे समय में उतना नहीं होता है। परसों हमारे भक्तों ने तुकाराम महाराज का एक नाटक किया खानापुर में, बेलगाम के पास, वहां दिखाया तो शिवाजी महाराज आ गए थे और तुकाराम उनको सुना रहे थे, और उस समय औरंगजेब सारी सेना को लेकर आ गया, किसी ने बताया कि ये आ रहे हैं अभी, तो तुरंत तुकाराम महाराज भगवान के सामने जाते हैं और सुंदर से गाने लगते हैं, बोलते हैं कि पूरा अभी तेरे ऊपर आशा छोड़ा हूं, और आंख बंद करके सिर्फ उनका गुणगान करते हैं, मुझे नहीं मालूम कैसा बचाएगा, तू बचाने पड़ेगा, और ऐसा मग्न हो रहा है, बस मग्न, और भगवान बचाते। द्रौपदी, द्रौपदी हमेशा भगवान का आश्रय ली थी, पर जब उसे निर्वस्त्र किया जा रहा था उस समय उसका मन एकटक, और मतलब जैसा گنے کا جس جوس ہے اس کو اور کڑک کڑک کرو تو ایک دم کڑک کھڑی سا کر بن جاتا ہے کانسنٹریٹڈ, ایسا بڑھانے کے لیے. اور دوسرا چیز کہ ان کا گنگان کرنے کے لیے, ایسی پرستھتی میں ڈالتے نہیں تو ان کی مہانتا کیسا پتا لگتا لوگوں کو. جیسے اسکول میں بچے ہیں اور ٹیچر جب آتا ہے تو سب لوگ پڑھائی کرتے رہتے ہیں, اور ٹیچر جاتا ہے کون صحیح میں پڑھائی کر رہا ہے نہیں, کب پتا چلے گا جب پریکشا دیا جاتا ہے, پریکشا میں کون کتنا پانی میں سمجھ میں آ جاتا ہے. کئی لوگ ودیارتھی لوگ ہوتے ہیں باہر سے بک اندر سے ایک کامک پڑھ رہے ہیں, جب پریکشا ہوتا ہے تو کون کتنا پانی میں سمجھ میں آتا ہے. ہم سب ہرے کرشن جاپ رہے ہیں پر تھوڑا تکلیف آ جائے گا تو کیا کریں گے, کرشن کی اور شرن لیں گے کہیں اور شرن ڈھونڈیں گے. تو بھگوان ایسے پرستھتی میں ڈالتے ہیں پورے دنیا کو دکھانے کے لیے اس کی مہانتا. دیکھو پرہلاد مہاراج کو اتنا تکلیف نہیں دیتے تو ان کی مہانتا کیسے لوگ سمجھتے. صرف ان کو کہنا تھا جائے ہرنیہ کشیپو اور ان کا سارا سمسیا حل, پورے برہمانڈ کے راجا جیسے جی سکتے تھے. بولے نہیں جائے ہری. پربھوپاد جی کون معلوم تھا, 70 سال کا بوڑھا ایک بنگالی آدمی 40 آدمی لیے ایک بوٹ میں بیٹھ کے جا رہا ہے, کیا کرے گا یہ, ایک بھگت بھی نہیں بنا انڈیا میں. پر 10 سال کے اندر ایسی پرستھتی میں ڈالے, کوئی ان کو مدد نہیں کیا, اور ویکتک روپ سے وہ اکیلے پورے ایک انتراشٹر کرشن بھاونا امرت سنگھ کا ستھاپن کیے, 108 مندر, اتنے سارے بھکت, اتنے سارے پستک, اکیلے. اگر ان کو اس پرستھتی میں ڈالتے نہیں تو ان کی مہانتا آج ہم نہیں سمجھتے. بہت سارے لوگ مدد کیے ہوتے تو بولے ایکچولی وہ نہیں کیے, دوسرے لوگ مدد کیے انہوں نے صرف نمت ماتر, پر نہیں پربھوپاد کو ایسی استھتی میں ڈالا کوئی مدد نہیں کیا. ان کا یش اور ان کا شرناگتی, ان کے ہاتھ میں واپس آنے کا ٹکٹ تھا. ایکچولی جب امریکہ گئے ان کے پاس واپس آنے کا ٹکٹ تھا, اور وہ 2-3 بار آتے تھے اور دیکھتے تھے جلدوت میں, میں جاؤں گا, میں واپس جاؤں گا, میں واپس جاؤں گا. پھر وہ دیتے نہیں, میرے گرو مہاراج کی آگیا ہے پاشچات دیش میں پرچار کرنا ہے, بنا پرچار کیے بنا کچھ پھل کے میں کیسے واپس جاؤں, کیسے میں منہ دکھاؤں اپنے گرو کو. جیسے ہنومان جی کو پربھو رام چندر نے کہا 4 دشا میں بندروں کو بھیجے پر دکشن دشا میں ہنومان کو بھیجے, تینوں لوگ واپس لوٹ کے آ گئے, پر ہنومان جی بولے جب تک سیتا ماتا کا انفارمیشن نہیں ملے گا تب تک کیا دکھائیں گے جا کے منہ, اسے اچھا ہے فاسٹنگ کر کے مر جاؤ. تو وہ لوگ اپواس کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر فاسٹنگ چل رہا ہے, اوپر ایک پکشی دیکھ رہا ہے ان کا فیسٹنگ کرنے کا بھی, جیسے یہ لوگ مریں گے. سمپتی نام کا ایک بڑا چیل بیٹھا ہوا تھا پکشی, تو یہ لوگ بولے تو مرنا تو ہے, ہری نام کرنے لگے, رام کتھا بولنے لگے, اور تب بولے دیکھو جٹایو کو بھگوان نے ایسا ایسا کیا. بولے جٹایو یہ تو میرا بھائی ہے, اور تب سمپتی نے ان کو بتایا سیتا کہاں ہے راون کہاں ہے. تب ہنومان جی واپس لوٹے, بنا خبر کے نہیں لوٹنے والے تھے. اسی طرح سے ویوسایاتمکا بدھی ایک ہے پورنندر, پربھوپاد جی نے ان کے گرو کی آگیا کو لے لیا, میں مر جاؤں گا امریکہ میں پر واپس کیسے لوٹوں بنا ان کے آگیا کا پالن کی. اور جب واپس آئے تو سفید ہاتھیوں کو لے آئے, اور یہاں بھارت میں ان کو بولے آپ پرچار کرو, یہ ان کی کرپا ہے. تو اس طرح سے بھگوان خاص اپنے بھکتوں کو جو ان کی پرستھتی کو پورے دنیا کو دکھانے کے لیے ان کو ایسے پرستھتی میں ڈالتے ہیں کہ پوری دنیا کو پتا لگے کہ ان کی مہانتا کیا ہے. تو آج کے دن اکلیش ہم اگر یہ پرارتھنا کریں گے بھگوان شری نرسنگھ دیو سے کہ ہرنیہ کشیپو وہاں نہیں یہاں ہے ہمارے ہردے میں, اس کو دور کریں تاکہ پرہلاد مہاراج کی شکشاؤں کو اپنائیں, ویشنو سماج میں بھی بھکتی پھیلے اور سارا وگھن دور ہو جائے, اور پورے وشو میں ہری نام گونجے اور ہرنیہ کشیپو کا ود ہو جائے, سب کو تھوڑا چنتا دور ہو جائے, और शांति मिले, सच्चा आनंद मिले, ये प्रार्थना। तो अभी हम लोग कीर्तन करेंगे और कीर्तन के दौरान आज का कीर्तन करते वक्त जब हाथ उठाएंगे तो कृपया आपकी यही प्रार्थना रहे, आज का नरसिंह आरती थोड़ा तीव्र से बड़े हृदय से ये तीन चीजों को याद रखते हुए हम करेंगे, ताकि नरसिंह देव की कृपा हो और परित्राणाय साधु नाम विनाशाय कृष्ण नाम। हरे कृष्ण। कारणवश वहां का आज का वातावरण भी, बाहर का वातावरण इतना प्रतिकूल है कि भक्ति में प्रगति करना बड़ा उनको मुश्किल है, तो उनके लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए अभी एक हमारा छोटा सा सेंटर उपलब्ध है पास में, तो वहां हमने निर्णय किया है कि ऐसे युवक